न्यूज 18 हिंदी के पॉडकास्ट में अनुराग अन्वेषी आपका स्वागत करता है। नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के सीधी में हुई बस दुर्घटना के बारे में, जिसने 47 मुसाफिरों की जान ले ली। इसके अलावा महाराष्ट्र का भी हाल होगा, जहां कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन की आशंका पसरने लगी है। इंग्लैंड के साथ हुए दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने कैसे हासिल की बड़ी जीत और इसके बाद वह टेस्ट मैचों की वर्ल्ड रैंकिंग में कहां पहुंचा, यह भी इस पॉडकास्ट में आपको बताएंगे। आसाराम की बिगड़ी तबीयत और भोपाल में हुए गैस रिसाव की भी जानकारी आपको देंगे। फिलहाल सुने सीधी में हुई बस दुर्घटना की खबर। मध्य प्रदेश के सीधी में मंगलवार को एक बस बाणसागर नहर में गिर गई। इस हादसे में 47 यात्रियों की मौत हो गई। सभी शव बरामद कर लिए गए हैं। बस में सवार 7 यात्रियों ने तैरकर अपनी जान बचाई। इनमें बस का ड्राइवर भी शामिल है। इस बस में कर्मचारियों समेत कुल 54 यात्री सवार थे। मध्य प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिवार को 5-5 लाख और पीएम मोदी ने नेशनल पीएम रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। यह बस सीधी से सतना जा रही थी। बताया जा रहा है कि रेलवे की परीक्षा की वजह से बस में ज्यादातर स्टूडेंट्स सवार थे। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे महाराष्ट्र में महामारी ने एक बार फिर रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। यहां पर एक बार फिर रोजाना 3000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। मुंबई के आंकड़े भी डराने वाले हैं। इस बीच मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। ट्रेनों में यात्रा करते समय ज्यादातर लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। लोगों को अभी कोरोना के नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम एक और लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ेंगे। लॉकडाउन फिर से लागू किया जाए या नहीं, यह लोगों के हाथ में है। उत्तर प्रदेश में एसटीएफ की टीम ने लखनऊ से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान केरल के अंसाद बदरुद्दीन और फिरोज खान के रूप में हुई है। इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामान और हथियार बरामद किए गए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मंगलवार को एसटीएफ उत्तर प्रदेश की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक हथियार और कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों का संबंध पीएफआई नामक आतंकी संगठन से है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि इनकी योजना वसंत पंचमी के आसपास कई जगहों के कार्यक्रमों में धमाका कर कई वरिष्ठ अधिकारियों और आम जनता में आतंक फैलाना था। लगभग 1 साल में हमने इस संगठन के 123 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार में 10वीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड यानी बीएसईबी के अनुसार इस साल 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 16 लाख से अधिक परीक्षार्थियों के शामिल होने की संभावना है, जिसमें 8,37,803 छात्राएं और 8,46,663 छात्र परीक्षा में शामिल हैं। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर के अनुसार इस बार बोर्ड परीक्षा के नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। परीक्षार्थियों को जहां सेंटर पर जूता मोजा पहनकर जाने की इजाजत है, वहीं परीक्षा केंद्र में आधार कार्ड से भी एंट्री दी जाएगी। एडमिट कार्ड के फोटो में गलती होने पर फोटो लगी बैंक पासबुक से भी विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति होगी। ये खबरें आप न्यूज 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए hindi.news18.com पर जाएं। नाबालिग से यौन शोषण मामले में जोधपुर की जेल में सजा काट रहे आसाराम की देर रात तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बाद जेल प्रशासन आसाराम को शहर के महात्मा गांधी अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां पर आसाराम ने 3 घंटे के इलाज के दौरान पुलिसकर्मियों को प्रवचन भी दिए। इस बीच आसाराम को देखने के लिए अस्पताल के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जेल प्रशासन के मुताबिक कल देर रात 12 बजे आसाराम की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्होंने सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की। तब जेल प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच आसाराम को जेल के बाहर महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया। जैसे ही आसाराम के समर्थकों को इसकी सूचना लगी, वह अस्पताल के बाहर पहुंच गए और जब तक पुलिस आसाराम को अस्पताल से जेल लेकर नहीं गई, तब तक लोग वहां पर डटे रहे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार की देर रात अचारपुरा में साल भर से बंद पड़ी फैक्ट्री से अचानक अमोनिया गैस लीक होने लगी। गैस के लीक होने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फैक्ट्री के करीब पेरवा खेड़ा गांव में रहने वाले लोगों को अचानक घुटन और आंखों में जलन होने लगी। फैक्ट्री से गैस लीक होने की जानकारी जैसे ही सामने आई, आसपास के इलाकों में भी दहशत फैल गई। फौरन प्रशासन को सूचना दी गई। गैस लीक होने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और नगर निगम का दस्ता हरकत में आया। कलेक्टर समेत तमाम आला अफसर आनन-फानन में पहुंचे और गांव को खाली कराया गया। फायर ब्रिगेड का दस्ता भी पहुंचा और फैक्ट्री में जिस टैंक से गैस लीक हो रही थी, वहां और आसपास के इलाकों में पानी का छिड़काव किया गया। इसके बाद प्रशासन ने अनाउंसमेंट कर लोगों को बताया कि फैक्ट्री से लीक होने वाली गैस जहरीली नहीं है। लोगों को आंख धोने की सलाह दी गई ताकि जलन कम हो सके। बंद फैक्ट्री से गैस लीक होने की वजह के बारे में विशेषज्ञों ने बताया कि गर्मी की वजह से अमोनिया गैस का प्रेशर बढ़ जाता है। फैक्ट्री के संचालन के दौरान अमोनिया गैस को पानी में रिलीज कर दिया जाता है। चूंकि यह फैक्ट्री साल भर से बंद थी, इसलिए पाइप में दबाव बढ़ा और वाल्व फट गया, इसलिए टैंक से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। भारतीय टीम ने चेन्नई में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पहले टेस्ट में मिली करारी हार के बाद टीम इंडिया ने वापसी करते हुए चेपॉक में खेले गए दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड को 317 रनों से शिकस्त दी। रनों के लिहाज से इंग्लैंड पर भारतीय टीम की यह सबसे बड़ी जीत है। 482 रनों की लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में सिर्फ 164 रनों पर सिमट गई। इंग्लैंड की ओर से कप्तान जो रूट और मोइन अली ही संघर्ष का मादा दिखा सके। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने 5, रविचंद्रन अश्विन ने 3 और कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। भारतीय टीम के जीत के नायक रविचंद्रन अश्विन रहे, जिन्होंने मैच में 8 विकेट झटकने के अलावा दूसरी पारी में शानदार शतक भी जड़ा। इंग्लैंड के खिलाफ मिली इस बड़ी जीत के बाद भारतीय टीम ICC की वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। पहले पायदान पर अभी भी न्यूजीलैंड की टीम खड़ी है। ये खबरें आप News18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए hindi.news18.com पर जाएं। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। नई खबरों और नए अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुराग अन्वेषी को दे विदा। नमस्कार दोस्तों।